नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी एवी नोट्स और मैं हूं कृष्णा भरद्वाज। और आज मैं आपको बताऊंगा गैसों के आविष्कार के बारे में। 16वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मन रसायन वैज्ञानिक पेरासेल्सस ने देखा कि गंधक के अम्ल में लोहा डालने से एक ज्वलनशील गैस निकलती है। वॉन हेलमोंट ने पहले पहल लगभग 1630 ईस्वी में गैस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कई प्रकार की गैसों के बारे में बताया, जिनमें दो गैसों का नाम का उल्लेख उन्होंने स्पष्ट तौर पे किया, लेकिन इन गैसों को प्राप्त करके भी वो इकट्ठा नहीं कर पाए थे। रॉबर्ट बॉयल ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार किसी गैस को इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की। लोहे और गंधक के अम्ल से प्राप्त होने वाली जो गैस थी, उसकी ज्वलनशीलता के बारे में भी इन्होंने ही पता लगाया। गैसों को इकट्ठा किए बिना उनका वैज्ञानिक विधियों द्वारा सही रूप में अध्ययन संभव नहीं था, इसलिए उनके ऊपर अध्ययन हो नहीं पा रहा था और बहुत लंबे समय तक ये रुकावट आती रही। गैसों को पानी के ऊपर इकट्ठा करने की विधि का आविष्कार सन 1727 में अंग्रेजी पादरी स्टीफन हेल्स ने किया। न्यूमेटिक बाथ के आविष्कार के बाद गैसों से संबंधित प्रयोग और शोध कार्य आसान हो गए। हेनरी केंडेविश ने 1766 ईस्वी में लोहे या जस्ते पर हल्के गंधक के अम्ल की अभिक्रिया द्वारा एक गैस प्राप्त की और उसके गुण का अध्ययन करने के बाद उसका नाम ज्वलनशील गैस रखा। उन्होंने सिद्ध किया कि यह गैस पानी का एक अवयव है। सन 1783 में लेवासिए ने इस गैस और ऑक्सीजन के संयोग के द्वारा जल का निर्माण किया और इसी आधार पर इस गैस का नाम हाइड्रोजन रखा। केंडेविश ने नमक के अम्ल से तांबे के तार की अभिक्रिया करके एक गैस प्राप्त की। प्रीस्टले ने भी उनके प्रयोग के आधार पर अम्ल वायु यानी एसिड एयर को पारे के ऊपर इकट्ठा किया। यह अम्ल वायु आज की हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस थी। कैंडेविश ने एक और गैस का पता लगाया था जिसका नाम फ्लाजिस्टिक या मेटेफिक एयर था, लेकिन उन्होंने अपने परिणामों को प्रकाशित नहीं कराया। सन 1772 ईस्वी में डेनियल रदरफोर्ड ने भी इस गैस की खोज की तथा इसके गुणों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने मेफिटिक एयर नाम इसका रखा। लेवासिए ने इसके गुणों का अध्ययन करके इसका नाम एजोट यानी जीवन रहित रखा। रसायनज्ञ चैपटल ने 1823 में इसका नाम नाइट्रोजन रखा, जो कि आज भी प्रचलित है। स्वीडन के एक रसायन वैज्ञानिक थे कार्ल विल्हेल्म शीले। उन्होंने पहले पहले सन 1772 ईस्वी के लगभग पारे के लाल ऑक्साइड को सूर्य की संकेंद्रित किरणों द्वारा गर्म करके एक गैस प्राप्त की, जिसका नाम उन्होंने फायर एयर रखा। एक अंग्रेज रसायन विज्ञानी थे जोसेफ प्रीस्टले। उन्होंने भी इसी विधि के द्वारा यही गैस प्राप्त की और लेवासिए ने सन 1776 में इसके गुणों का अध्ययन करके इस गैस का नाम ऑक्सीजन रखा। वास्तव में यह गैस अम्लों का आवश्यक अंग नहीं था या नहीं है। शीले ने सन 1774 ईस्वी में नमक के अम्ल और मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करके क्लोरीन गैस की प्राप्ति की और इसे ऑक्सीम्यूरेटिक गैस कहा। डेवी ने सन 1810 में इसको एक तत्व सिद्ध किया और हरे पीले रंग के कारण इसका नाम क्लोरीन रखा। सन 1770 में प्रीस्टले ने सोडा वाटर का आविष्कार किया। उन्होंने सन 1774 में नौसादर और चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त की। नौसादर से बनाए जाने के कारण इसका नाम अमोनिया रखा गया। बर्थेलो ने सन 1785 में यह सिद्ध किया कि अमोनिया के अपघटन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें बनती हैं। सन 1774 में प्रीस्टले ने शुद्ध पारे पर सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया से एक गैस बनाई। लेवासिए ने सन 1777 में इस गैस का नाम सल्फर डाइऑक्साइड रखा। ग्लाउबर ने सन 1648 में हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक और सांद्र गंधक के अम्ल को गर्म करके प्राप्त किया। डेवी ने सन 1810 ईस्वी में इसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक बताया और इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रखा। चलिए अब जानते हैं गैसों के बारे में कुछ प्रमुख बातें। और इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा। तो गैसों के जो प्रमुख गुण हैं वो हैं, गैसों के अणु ठोस और द्रवों की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं और ये निरंतर रूप से गति करते रहते हैं। गैसों का अपना कोई निश्चित रूप या आकार नहीं होता है। गैसों को दबाकर उनका आयतन कम किया जा सकता है। दबाने से गैसें द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं और 11 गैसें ऐसी हैं जो साधारण तापमान पर तत्व हैं। गैसें कुछ नियमों का पालन करती हैं और वो नियम कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक है बॉयल का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी गैस का आयतन उस पर लगे दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है जब कि तापमान स्थिर हो। दूसरा है चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके एब्सोल्यूट तापमान के समानुपाती होता है। गे लूसप का नियम। स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके एब्सोल्यूट तापमान के समानुपाती होता है। एवोग्राडो का नियम। एक समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ग्राहम का विसरण नियम। किसी दिए गए तापमान और दाब पर किसी के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैसों का स्वभाव समझने के लिए ये नियम बहुत उपयोगी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।